नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर अडानी समूह द्वारा शेयरों की कीमतों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय देने का अनुरोध किया। सेबी ने एक नई अर्जी में कहा कि उसने इससे जुड़े 24 मामलों की जांच पड़ताल की है। नियामक ने कहा, उक्त 24 मामलों में से 17 की जांच पड़ताल पूरी हो गई है और सेबी की मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत सक्षम प्राधिकारी ने उसे मंजूरी दे दी है। याचिका के अनुसार एक मामले में सेबी ने अब तक एकत्र की जा सकने वाली सामग्री के आधार पर जांच पड़ताल पूरी कर ली है और नियामक की मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने भी इसे मंजूरी दे दी है। सेबी ने कहा कि बाकी बचे 6 मामलों में से 4 की जांच पड़ताल में निष्कर्षों को स्पष्ट कर दिया गया है और उसके परिणाम स्वरूप तैयार की गई रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के पास भेजी गई है। फिनोलेक्स केबल्स का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही का शुद्ध लाभ 39% बढ़कर 132.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने सोमवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 95.6 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। पुणे मुख्यालय वाली कंपनी ने बयान में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी आय सालाना आधार पर 19% बढ़कर 1,204.3 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी ने बताया कि इस दौरान बिजली के तारों का कारोबार 29% बढ़ा, जबकि धातु आधारित उत्पादों की बिक्री में 17% की वृद्धि हुई। ऑप्टिकल फाइबर केबल का कारोबार 50% बढ़ा। औषधि क्षेत्र की कंपनी वॉकहार्ड लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध घाटा बढ़कर 136 करोड़ रुपए हो गया। मुख्य रूप से खर्च बढ़ने से कंपनी का घाटा बढ़ा है। कंपनी ने शेयर बाजार में ये जानकारी दी। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी को 75 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी की एकीकृत परिचालन आय बढ़कर 644 करोड़ रुपए हो गई, जबकि साल भर पहले समान अवधि में ये 595 करोड़ रुपए रही थी। समीक्षाधीन अवधि में वॉकहार्ड का कुल खर्च 762 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 748 करोड़ रुपए था। पुनचक्रण से जुड़ी कंपनी विकास लाइफ केयर का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ कई गुना होकर 13.31 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 2.33 करोड़ रुपए था। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में कुल आय बढ़कर 106.30 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 88.87 करोड़ रुपए थी। खर्च 91.77 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 86.71 करोड़ रुपए था। एयरलाइन स्पाइसजेट का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 205 करोड़ रुपए रहा। यात्रियों की संख्या बढ़ने से एयरलाइन को फायदा हुआ है। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 779 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। स्पाइसजेट की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यात्रियों की संख्या बढ़ने से 205 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बयान के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में एयरलाइन की परिचालन आय 2002 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2457 करोड़ रुपए थी। एयरलाइन का व्यय घटकर 1291 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2072 करोड़ रुपए था। स्पाइसजेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एयरलाइन ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लाभ कमाया है। अडानी समूह की बंदरगाह कंपनी से लेखा परीक्षक के तौर पर डेलॉइट के इस्तीफा देने के बाद सोमवार को समूह के शेयरों में गिरावट आई। डेलॉइट ने इस्तीफा देने से पहले हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाहर से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। बीएसई पर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 5.41% की गिरावट आई। अडानी ट्रांसमिशन में 4.77%, अडानी पावर में 4.23%, अंबुजा सीमेंट्स में 4% और अडानी पोर्ट्स में 3.70% की गिरावट आई। अडानी एनर्जी के शेयर में 3.22%, अडानी विल्मर के 3.14%, अडानी टोटल गैस के 3%, एनडीटीवी के 3% और एसीसी में 2.23% की गिरावट आई। आरबीआई ने अपने निरीक्षण कार्यों के लिए एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर एक व्यवस्था तैयार करने के लिए वैश्विक परामर्श फर्म मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया एलएलपी और एक्सचेंजर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया को चुना। आरबीआई अपने विशाल डेटाबेस का विश्लेषण करने और बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियामक निरीक्षण में सुधार लाने के लिए उन्नत एनालिटिक्स एआई और एमएल का बड़े पैमाने पर उपयोग करना चाहता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। पिछले साल सितंबर में आरबीआई ने निरीक्षण में उन्नत विश्लेषण एआई और एमएल के उपयोग के लिए सलाहकारों को शामिल करने के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए थे। ईओआई दस्तावेज में निर्धारित जांच मूल्यांकन के आधार पर केंद्रीय बैंक ने सलाहकारों के चयन के लिए 7 आवेदकों को छांटा था। केरल से वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी के लिए सीधी उड़ान सेवा शनिवार को कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शुरू हो गई। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि वियतनामी उड़ान कंपनी वियत जेट की नई उड़ान सेवा के लिए उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। CIAL के अनुसार नई उड़ान सेवा शुरू होते ही कोचिन से दक्षिण पूर्व एशिया में गंतव्यों के लिए 45 उड़ानें हो गई हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।